यीशु मसीह का प्रकटीकरण क्रमांक 6
सोए हुए मृतकों का पुनरुत्थान।
हम यशाया की अंतिम भविष्यवाणी पर आधारित होकर आगे बढ़ते आ रहे हैं, जो अध्याय 40 से उस विलंब के समय की पहचान के साथ शुरू होती है, जो 18 जुलाई 2020 की निराशा से आरंभ हुआ था। हम प्रकाशित वाक्य के दो गवाहों की मृत्यु का संबंध यहेजकेल के अध्याय 37 में सूखी हड्डियों की घाटी में पड़े मृतकों से जोड़ते आ रहे हैं। हम पुनरावृत्ति के माध्यम से उन घटनाओं के अत्यंत विशिष्ट क्रम को स्थापित करना चाहते हैं, जो अथाह कुंड से ऊपर उठे पशु द्वारा सड़क पर हत्या किए गए खोलियों के पुनरुत्थान से संबंधित है। जब हम इन भविष्यद्वाणी अंशों को एक दूसरे के अनुरूप रखते हैं, हम प्रकाशित वाक्य के ऐसे भागों की मोहरें खोल रहे हैं जिन्हें अब तक कभी पहचाना नहीं गया था, क्योंकि ये संदेश यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य की मुहर खोलने का ही है, जो मानव अनुग्रह काल के समाप्त होने से ठीक पहले घटित होता है। हम ये कार्य कर रहे हैं क्योंकि समय निकट है। प्रकाशित वाक्य की उन सच्चाइयों की मुहरें खोलते हुए जो अब पूरी होने की प्रक्रिया में हैं, हम वही कार्य कर रहे हैं जिसे प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना का कार्य परिभाषित किया गया था। उसे जो बातें उसने देखी थीं, अर्थात जो उस समय विद्यमान थीं, उन्हें लिखने को कहा गया, और उन बातों को दर्ज करते समय यूहन्ना साथ ही वे बातें भी लिख रहा था जो आगे होने वाली थीं।
जो बातें तूने देखी हैं, जो है और जो इसके बाद होने वाली है, उन्हें लिख। प्रकाशित वाक्य 1:1
सेवेंथ डे एडवेंटिस्टों के लिए एक तार्किक ठोकर संभवतः प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के तृति उनकी परंपरागत समझ ही हो सकती है। जब कोई व्यक्ति किसी स्थापित सत्य को स्वीकार तो करता है, पर यह देखने में असफल रहता है कि वो स्थापित सत्य समय के साथ विकसित होने के लिए था, तो सत्य की उसकी प्रारंभिक सही समझ एक परंपरा या रीति रिवाज बन सकती है। जो सत्य परंपरा में बदल गया है, वो लाओदीकिया को दिए गए संदेश में दर्शाए गए अंधेपन को जन्म दे सकता है। मूल सत्य अभी भी सत्य है, परंतु ये ना देख पाना कि सत्य समय के साथ विकसित होता है, अंधेपन उत्पन्न करता है। सत्य उनके अंधेपन का कारण नहीं है, अंधेपन तो मात्र कारण का एक लक्षण है। कारण ये है कि जो लोग परंपरा और रीति रिवाज के आराम से आत्मसंतुष्ट है, उनके कान सुनना नहीं चाहते, उनकी आंखें देखना नहीं चाहती और उनका हृदय परिवर्तित होना नहीं चाहता।
मसीह ने अपनी शिक्षा में वे पुराने सत्य प्रस्तुत किए जिनका मूल स्रोत स्वयं वे थे, वे सत्य जिन्हें उन्होंने पितृपुरुषों और भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से कहा था, पर अब उन्होंने उन पर नया प्रकाश डाला। उनका अर्थ कितना भिन्न प्रतीत हुआ। उनकी व्याख्या से प्रकाश और आध्यात्मिकता की बाढ़ सी आ गई, और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि पवित्र आत्मा शिष्यों को आलोकित करेगा, कि परमेश्वर का वचन उनके लिए निरंतर उद्घाटित होता रहेगा, वे उसके सत्यों को नई शोभा में प्रस्तुत कर सकेंगे। जब से एदेन में मुक्ति का प्रथम वचन कहा गया, तब से मसीह का जीवन, उनका चरित्र और उनके मध्यस्थ कार्य मानव मनों के अध्ययन का विषय रहे हैं। तथापि जिन जिन मनों के माध्यम से पवित्र आत्मा ने कार्य किया है, उन सभी ने इन विषयों को ऐसे प्रकाश में प्रस्तुत किया है जो नया और ताजगी भरा है। मुक्ति के सत्य निरंतर विकास और विस्तार की क्षमता रखते हैं। यद्यपि वे प्राचीन हैं, फिर भी वे सदैव नए हैं और सत्य के खोजी के सामने निरंतर अधिक महिमा और प्रबलतर शक्ति प्रकट करते रहते हैं। हर युग में सत्य का एक नया विकास होता है, उस पीढ़ी के लोगों के लिए परमेश्वर का एक संदेश। पुराने सत्य सभी आवश्यक हैं, नया सत्य पुराने से स्वतंत्र नहीं बल्कि उसी का उद्घाटन है। हम नए को तभी समझ सकते हैं जब पुराने सत्यों को समझा जाए। जब मसीह ने अपने शिष्यों के सामने अपने पुनरुत्थान का सत्य खोलना चाहा, तो उन्होंने मूसा और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ किया और सभी शास्त्रों में अपने विषय की बातें उन्हें समझाईं। लूका 24:27। परंतु सत्य के नवीन उद्घाटन में जो प्रकाश चमकता है, वही पुराने को महिमामय करता है। जो नए को अस्वीकार या उपेक्षा करता है, वह वास्तव में पुराने सत्य को धारण नहीं करता। उसके लिए पुराना सत्य अपनी जीवनदायी शक्ति खो देता है और मात्र एक निर्जीव रूप बन जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पुराने नियम की सच्चाइयों पर विश्वास करने और उन्हें सिखाने का दावा करते हैं, जबकि वे नए नियम को अस्वीकार करते हैं। परंतु मसीह की शिक्षाओं को स्वीकार करने से इनकार करके वे ये दिखाते हैं कि वे उन बातों पर विश्वास नहीं करते जिन्हें पितृपुरुषों और भविष्यद्वक्ताओं ने कही हैं। यदि तुमने मूसा पर विश्वास किया होता, मसीह ने कहा, तो तुम मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि उसने मेरे विषय में लिखा है। यूहन्ना 5:6 इसलिए पुराने नियम के विषय में उनकी शिक्षाओं में भी कोई वास्तविक सामर्थ्य नहीं है। जो लोग सुसमाचार पर विश्वास करने और उसे सिखाने का दावा करते हैं, उनमें से बहुत से लोग इसी प्रकार की भूल में पड़े हुए हैं। वे पुराने नियम के शास्त्रों को एक ओर रख देते हैं, जिनके विषय में मसीह ने कहा, वे ही हैं जो मेरे विषय में गवाही देते हैं। यूहन्ना 5:33। पुराने को ठुकराकर वे वस्तुतः नए को भी ठुकराते हैं, क्योंकि दोनों एक अविभाज्य संपूर्ण के अंग हैं। कोई भी मनुष्य सुसमाचार के बिना परमेश्वर की व्यवस्था को या व्यवस्था के बिना सुसमाचार को सही रीति से प्रस्तुत नहीं कर सकता। व्यवस्था सुसमाचार का मूर्त रूप है और सुसमाचार व्यवस्था का उद्घाटित रूप है। व्यवस्था जड़ है और सुसमाचार उसके द्वारा उत्पन्न सुगंधित फूल और फल है। Christ's Object Lessons 170।
जो लोग पुराने पर विश्वास करने का दावा करते हैं पर नए को अस्वीकार करते हैं, ये बात और भी अधिक बलपूर्वक उन सेवेंथ डे एडवेंटिस्टों पर लागू होती है जो संपूर्ण बाइबल पर विश्वास करने का दावा करते हैं पर भविष्यवाणी की आत्मा के लेखों को अस्वीकार करते हैं। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना अंतिम दिनों में परमेश्वर के लोगों का प्रतीक है, जिन्हें बाइबल और भविष्यवाणी की आत्मा दोनों को स्वीकार करने के कारण सताया जा रहा है।
मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई भी हूं और क्लेश में तथा यीशु मसीह के राज्य और धैर्य में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण उस द्वीप में था जो पटमोस कहलाता है। प्रकाशित वाक्य 1:9।
यदि कोई व्यक्ति यीशु की गवाही को स्वीकार करता है जो भविष्यवाणी की आत्मा है, यानी एलन वाइट की रचनाएं, तो उनकी रचनाओं का पूर्ववर्ती अंश उस मुद्दे को चिन्हित करता है जिसे मैं संबोधित कर रहा हूं। उन्होंने लिखा कि उद्धार के सत्य निरंतर विकसित और विस्तृत होने में सक्षम है। यद्यपि पुराने हैं, वे सदैव नए रहते हैं और सत्य के खोजी के सामने निरंतर अधिक महिमा और भी प्रबल शक्ति प्रकट करते रहते हैं। और ये भी कि हर युग में सत्य का एक नया विकास होता है उस पीढ़ी के लोगों के लिए परमेश्वर का एक संदेश। यद्यपि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की वो परंपरागत समझ जिसे एक सामान्य सातवें दिन का एडवेंटिस्ट मानता है सत्य है, फिर भी प्रकाशित वाक्य की पूरी पुस्तक अंतिम दिनों की गवाही है। हम वर्तमान में उस सत्य को लागू कर रहे हैं जिसकी मुहर अब खुल रही है, और वो सत्य उन लोगों द्वारा पहचाना नहीं जाएगा जो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के सभी अंश यीशु मसीह के उस प्रकाशित वाक्य का भाग है जो अंतिम दिनों में अनावृत होता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 के विषय में कि वो फ्रांसीसी क्रांति की पूर्ति है, एडवेंटिज्म की जो धारणा रही है वो सही है और सिस्टर व्हाइट उस सही दृष्टिकोण का समर्थन करती हैं, फिर भी वो सत्य केवल एक इतिहास था जिसे अंतिम दिनों को दर्शाने के लिए दर्ज किया गया था। प्रकाशित वाक्य की संपूर्ण पुस्तक इस भविष्य सूचक घटना द्वारा शासित है। हम सात गर्जनों के गुप्त इतिहास पर आधारित होकर उसे एक मार्गदर्शक के रूप में प्रयोग कर रहे हैं ताकि यहेजकेल 37, यशाया 40 और प्रकाशित वाक्य 11 को मत्ती 25 के 10 कुवारियों के दृष्टांत के साथ एक साथ लाया जा सके। एक और भविष्य सूचक रेखा जो उन घटनाओं के भविष्य सूचक घटनाक्रम के हमारे अनुप्रयोग का समर्थन करती है मसीही की रेखा में पाई जाती है, जिसमें एक द्वितीयक साक्षी भी शामिल है। जब यीशु का बपतिस्मा हुआ तब वे 30 वर्ष के थे और यीशु मसीह बने, क्योंकि नए नियम की यूनानी भाषा में क्राइस्ट या पुराने नियम की इब्रानी भाषा में मसीहा का अर्थ अभिषिक्त है।
मैं कहता हूं वो बात तुम जानते हो जो सारे यहूदिया में प्रचारित हुई और उस बपतिस्मा के बाद गलील से आरंभ हुई, जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था, कि कैसे परमेश्वर ने नासरत के यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषिक्त किया, जो भलाई करता फिरता था और उन सबको चंगा करता था जो शैतान से पीड़ित थे, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। प्रेरितों के काम 10:37-48।
30 वर्षों तक यीशु अभिषेक के लिए तैयारी करते रहे और जब उनके बपतिस्मा के समय उनका अभिषेक हुआ तब मसीह के रूप में उन्होंने 3.5 भविष्य सूचक दिनों तक अपना संदेश प्रस्तुत किया। तब उन्हें मार डाला गया, कब्र में रखा गया, वे पुनर्जीवित हुए और फिर स्वर्ग में आरोहित हो गए। उनकी 3.5 वर्षों की सेवकाई की शुरुआत उनका बपतिस्मा था, जो उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रतीक है, और अपनी 1260 दिनों की सेवकाई की अंत में वे क्रूस पर चढ़ाए गए और फिर पुनर्जीवित हुए, क्योंकि वे ही आदि और स्वर्ग है। उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान की उस घटना ने एक शक्तिशाली सेना उत्पन्न की, जिसने अगले 3.5 वर्षों तक यहूदियों को सुसमाचार सुनाया और उसके बाद संसार को। बाइबल की भविष्यवाणी का विरोधी मसीह अर्थात कैथोलिक कलीसिया शक्ति से अभिषिक्त होने से पहले भी 30 वर्षों तक तैयारी में था। 508 में द डेली को हटा दिया गया। सिस्टर व्हाइट हमें सीधे बताती हैं कि मिलर राइट्स के पास दानियल की पुस्तक में द डेली की सही समझ थी, इस तथ्य के बावजूद कि 29-30 के दशक में लाओदिकियन सेवन डे एडवेंटिस्ट कलीसिया द डेली के बारे में धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद के शैतानी दृष्टिकोण पर लौट गई।
तब मैंने दैनिक दानियल 8:15 के संबंध में ये देखा कि बलि शब्द मनुष्य की बुद्धि से जोड़ा गया था और वो मूल पाठ का हिस्सा नहीं है, और ये कि प्रभु ने उसके विषय में सही दृष्टिकोण उन लोगों को दिया जिन्होंने न्याय घड़ी की पुकार दी। अर्ली राइटिंग 74।
नित्य मूर्ति पूजा का प्रतिनिधित्व करता है और मूर्ति पूजक रोम व शक्ति थी, जिसने पापाई सत्ता को पृथ्वी के सिंहासन पर आरूढ़ होने से रोके रखा, जैसा कि दानियेल की पुस्तक में भविष्यवाणी की गई थी और उसके बाद इतिहास द्वारा इसकी पुष्टि हुई, और फिर स्वर्गदूतों ने इसे विलियम मिलर को प्रकट किया और आगे एलन व्हाइट द्वारा इसकी पुष्टि हुई। फाइसो का मेतस पापाई सत्ता के उदय पर लगी मूर्ति पूजक रोक हटा दी गई। जैसे मसीह के साथ हुआ, वैसे ही 538 में अधिकार प्राप्त करने के लिए विरोधी मसीह ने 30 वर्षों तक तैयारी की। मसीह और विरोधी मसीह दोनों ने अधिकार पाने की तैयारी के लिए 30 वर्ष लगाए। 538 में जब पापाई सत्ता को अधिकार मिला, तो उसने दूरमा 3.5 भविष्य सूचक वर्षों तक मृत्यु का अपना संदेश प्रचार किया, ठीक वैसे ही जैसे मसीह ने 3.5 वर्षों तक जीवन का अपना संदेश प्रचार किया था। प्रकाशित वाक्य 11 के दो गवाह, जो फ्रांसीसी क्रांति के इतिहास में पुराने और नए नियम का प्रतिनिधित्व करते थे, उन्हें भी 3.5 भविष्य सूचक दिनों तक भविष्यवाणी करने की शक्ति दी गई।
और मैं अपने दो गवाहों को शक्ति दूंगा, और वे टाट के वस्त्र पहने हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। प्रकाशित वाक्य 11:12।
70 साल 60 में 1260 भविष्यवाणी के दिनों के बाद मसीह विरोधी को घातक घाव लगा, जैसे 1260 दिनों के बाद मसीह की क्रूस पर मृत्यु हुई, और वैसे ही परमेश्वर के वचन का प्रतिनिधित्व करने वाले दो गवाह 1260 दिनों के बाद सड़कर पर मार डाले गए। तीसरे दिन मसीह पुनर्जीवित हुए, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मसीह विरोधी से संबंधित प्रमुख विषयों में से एक उसके घातक घाव का चंगा होना अर्थात उसका पुनरुत्थान है। मसीह का पुनरुत्थान तीसरे दिन हुआ, और दो गवाहों का पुनरुत्थान 3.5 दिन बाद हुआ। मसीह विरोधी का प्रतीकात्मक पुनरुत्थान तीसरे दिन होता है, क्योंकि कई भविष्य सूचक साक्ष्यों में तीसरा दिन रविवार के कानून का प्रतीकक है। रविवार के कानून के समय प्रकाशित वाक्य 13 का समुद्री पशु पुनर्जीवित होता है, और समुद्री पशु का चिन्ह एक परीक्षा बन जाता है। तब संयुक्त राष्ट्र प्रकाशित वाक्य 17 के 10 राजा संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्देशन में, जो उन 10 राजाओं में प्रमुख राजा है, मसीह विरोधी को 3-भागी संघ के प्रमुख के रूप में उठाकर स्थापित करेंगे, जब पापाई सत्ता पृथ्वी के सिंहासन पर आरोहित होगी।
जैसे जैसे हम अंतिम संकट के निकट आते हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रभु के माध्यमों के बीच सामंजस्य और एकता विद्यमान हो। संसार तूफानों, युद्धों और मतभेद से भरा हुआ है, फिर भी एक ही प्रधान पापाई सत्ता के अधीन लोग उसके गवाहों के माध्यम से परमेश्वर का विरोध करने के लिए एकजुट हो जाएंगे। इस एकता को महान धर्मत्यागी द्वारा सुदृढ़ किया जाता है। वो जहाँ सत्य के विरुद्ध लड़ाई में अपने प्रतिनिधियों को एक करने का प्रयास करता है, वहीं वो सत्य के समर्थकों को विभाजित और तितर बितर करने के लिए काम करेगा। ईर्ष्या, दुष्ट संदेह और निंदा, कलह और फूट उत्पन्न करने के लिए उसी द्वारा उकसाए जाते हैं। टेस्टिमोनीज खंड 7:8-16 तक।
जब मसीह विरोधी पुनरुत्थित होता है तो वो पृथ्वी के सिंहासन पर आसीन हो जाता है और आर्मगेडन की ओर कूच में त्रिविध संघ का नेतृत्व करता है, जैसे इजेबेल ने अहाब को कर्मेल पर्वत पर ले गई। भजनकार आसाफ संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 राष्ट्रों की पहचान परमेश्वर के शत्रुओं के एक दुष्ट महासंघ के रूप में करता है, जो अपना सिर उठाते हैं, जो कि पापाई शक्ति है।
आसाफ का गीत या भजन, हे परमेश्वर मौन न रहे, चुप न रहे और निश्चल न रहे, हे परमेश्वर, क्योंकि देख तेरे शत्रु कोलाहल मचा रहे हैं और जो तुझसे बैर रखते हैं उन्होंने सिर उठा लिया है। उन्होंने तेरे लोगों के विरुद्ध कपटपूर्ण परामर्श किया है और तेरे छिपे हुए लोगों के विरुद्ध मशविरा किया है। उन्होंने कहा, आओ हम उन्हें इस प्रकार काट दें कि वे अब जाति न रहे, ताकि इज़राइल का नाम फिर स्मरण में न रहे, क्योंकि उन्होंने एक मन होकर परामर्श किया है। उन्होंने तेरे विरुद्ध संधि बांधी है, एदुम एक देरे और इश्माएली, मुआब और हागरियों, गेबाल, अम्मोन और अमालेक, पलिश्ती सौर के निवासियों सहित अशूर भी उनके साथ जुड़ गया है। उन्होंने लूत के पुत्रों की सहायता की है। सेला। भजन संहिता 88:1-8।
तब 3 स्वर्ग दूतों का ध्वज आकाश के बीचों बीच लहरा रहा है,
और मैंने देखा कि एक और स्वर्ग दूत आकाश के बीचों बीच उड़ता हुआ आया, जिसके पास पृथ्वी पर बसने वालों को और हर एक जाति, कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए अनंत सुसमाचार था। वो ऊंचे शब्द से कहता था, परमेश्वर से डरो और उसे महिमा दो, क्योंकि उसके न्याय की घड़ी आ पहुंची है, और उसकी आराधना करो जिसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जल के सूतों को बनाया। फिर एक और स्वर्गदूत उसके पीछे आया ये कहता हुआ, बाबुल वो बड़ा नगर गिर गया, क्योंकि उसने अपने व्यभिचार के क्रोध की दाख मदिरा सब जातियों को पिला दी। और तीसरा स्वर्गदूत उनके पीछे पीछे आया ऊंचे शब्द से ये कहता हुआ, यदि कोई पशु और उसकी प्रतिमा की आराधना करे और अपने माथे पर या अपने हाथ पर उसका चिन्ह ले, तो वही परमेश्वर के क्रोध की उस दाख मदिरा को पिएगा जो उसके रोष के कटोरे में बिना मिलावट उंडेली गई है। और पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने के सामने उसे आग और गंधक से यातना दी जाएगी, और उनकी यातना का धुआं युगानुयुग ऊपर उठता रहेगा। और जो पशु और उसकी प्रतिमा की आराधना करते हैं और जो कोई उसके नाम का चिन्ह लेता है, उन्हें दिन रात विश्राम न मिलेगा। यह पवित्र लोगों का धैर्य है, यह वे हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। प्रकाशित वाक्य 14:3-12।
3 स्वर्ग दूतों का वज तब आकाश के बीचों बीचों लहरा रहा होगा, पर शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्र के 10 राजा मसीह विरोधी को आकाश में उठा देंगे। तब वह ध्वज सत्य का संदेश घोषित कर रहा होगा और मसीह विरोधी परंपरा और रीति रिवाज का संदेश घोषित कर रहा होगा। 3 स्वर्गदूत मानव जाति को चेतावनी दे रहे हैं कि पापसी का चिन्ह स्वीकार न करें, पर झूठे नबी के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया को उसी चिन्ह को स्वीकार करने के लिए मजबूर करेगा। हम यहीं समाप्त करते हैं और इसे अपने अगले लेख में आगे बढ़ाएंगे।